SBS हिंदी सेवा के श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर मोहर लगाकर अपने घनिष्ठ होते हुए संबंधों में एक नया मुकाम स्थापित किया। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन टेन ने एक ऑनलाइन समारोह में इस महत्वपूर्ण समझौते पर दस्तखत किए। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में हुए इस द्विपक्षीय समझौते को दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की गहराई का सूचक बताया।
इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वॉटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने इस समझौते को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते संबंधों में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह भारत आने के इच्छुक घरेलू विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कारोबारी विविधता के अनगिनत अवसर पैदा करेगा, जिनका मूल्य प्रतिवर्ष 14.8 अरब डॉलर होगा।
The pace and scale of our cooperation since we announced our comprehensive strategic partnership has been remarkable. Some 282 million in new initiatives that my government has announced, including at the summit, which will drive our expanding cooperation. This is the single largest Australian government investment in our relationship with India, but it won't be the last. And now we mark another milestone in that relationship. The signing of the Indus Agreement, the Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement. This agreement further develops on the promise of our economic relationship, realizes it. It will facilitate cheaper Australian goods to India.
इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इसी तरह भारत भी ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोयला, भेड़ के मीट और ऊन, एवोकाडो, प्याज, पिस्ता, काजू, ब्लू और ब्लैकबेरी आदि पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। विश्व के बदलते हालात के बीच भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए आजकल भारत में दुनिया भर के देशों से विशिष्ट विदेश मेहमानों के आने का तांता लगा हुआ है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत के 3 दिन के दौरे पर आए। यह 2017 के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच आई खटास के बाद इस दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिनमें भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेल सेवा और साथ ही नेपाल में ग्लोबल पेमेंट कार्ड रुपए का लॉन्च भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर श्री देउबा का धन्यवाद करते हुए दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों और बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की।
फ्रेंड्स, आज देउबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने केंद्रीय जांच एजेंसियों, खासतौर पर सीबीआई और ईडी की हालिया भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें स्वयं को सुधारने को कहा है। डेमोक्रेसी, जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर सीबीआई में एक व्याख्यान देते हुए श्री रमना ने कहा कि विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यवाही और निष्क्रियता से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने पुलिस अफसरों को राजनीतिक ताकतों से दूरी बनाकर रखने को कहा, जिससे जांच एजेंसियों की स्वायत्तता कायम रह सके।
With the passage of time, like every other institution of repute, CBI has also come under deep public scrutiny. Its actions and inactions have often raised questions regarding its credibility in some cases. As an institution, you have so many achievements to your credit. In the process, many of your personnel have put their health and life at risk. Some have also made supreme sacrifices. In spite of all this, it is ironical that people hesitate to approach the police in times of dispute. The image of the institution of police is regrettably tarnished by allegations of corruption, police excesses, lack of impartiality, and closeness with political class. When you try to enter yourself to the powers, you will have to face the consequences. The need of the hour is to reclaim social legitimacy and public trust. The first step to gain the same is to break the nexus with the political executive.
श्री रमना ने एक ऐसे स्वतंत्र संस्थान के बनाने के लिए जोर दिया जिससे सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ जैसी एजेंसियां एक ही कानून के अंदर रहकर स्वायत्त और स्वतंत्र तरीके से काम कर सकें। मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणियों का परोक्ष रूप से जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि सीबीआई अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है, बल्कि वास्तव में भारत की शीर्ष आपराधिक जांच एजेंसी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन गई है, कमोबेश वैसा ही हाल भाजपा का भी है। पंजाब में ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने हौसले बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य भाजपा शासित गुजरात में भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि गुजरात में अभी चुनाव 8 महीने से ज़्यादा दूर हैं, फिर भी पहले पहल का फ़ायदा लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया।
और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं, अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, हमारी प्यारी है गुजरात की। इनकलाब, इनकलाब।
और इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।